मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं प्रधानमंत्री द्वारा की गई 6 महत्वपूर्ण घोषणाओं की जानकारियां आपको दूंगा, जो उन्होंने कल लाल किले से 15 अगस्त के अवसर पर की हैं। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी सूचनाओं और समाचारों को देख लेते हैं। एक सूचना जो आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि जो प्री एग्जामिनेशन होने या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो होने हैं नेक्स्ट ईयर, उनकी डेट घोषित कर दी गई है। डेफिनेटली आपने यह खबर पढ़ ली होगी, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इसके बारे में जो नोटिफिकेशन आएगा वह 2 फरवरी को आएगा, यानी कि आप कह लीजिए कि विज्ञापन जारी हो जाएगा। और जो आपको प्री एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म भरकर भेजने की जो लास्ट डेट होगी वह 22 फरवरी की होगी। 2 फरवरी को नोटिफिकेशन आएगा, 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और जो प्री एग्जाम होंगे वो 5 जून को होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 जून को होंगे। यानी कि यूपीएससी अभी देखिए 10 अक्टूबर को होने हैं, लेकिन अपने इस साइकिल को आप यूं कह लीजिए कि दुरुस्त कर लेगी। और इसके बाद फिर जो मेंस होंगे वो 16 सितंबर को होंगे। आपको मालूम है कि मेंस 5 दिन तक चलते हैं, और अभी के जो मेंस होने हैं वो जनवरी में होने हैं, तो यानी कि कवर कर लेगी यूपीएससी। तो बहुत अच्छी बात है कि जो यूपीएससी है वो बहुत पहले ही अपना कैलेंडर जारी कर देती है और फिर उसे निभाती भी है, यदि कोरोना जैसा कोई आपात संकट उत्पन्न न हो जाए। फ्रेंड्स, एक दूसरी सूचना ये है कि यूट्यूब पर हम लोगों ने एक लेक्चर डाला हुआ है, और वो खासकर पॉलिटिकल साइंस के प्रिपरेशन के ऊपर है। अभी जो अक्टूबर में प्री एग्जामिनेशन होने हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी आप कैसे करेंगे, इस यूट्यूब प्रोग्राम का जो टाइटल है वो है इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इस नाम से आप YouTube पर इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि एक बार आपको ऐसा करना चाहिए। डेफिनेटली इससे प्रिपरेशन में आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी, या यूं कह लीजिए कि अपेक्षाकृत आप थोड़े फोकस्ड तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। दोस्तों, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज़ में भी आपने ज़रूर सुना होगा कि भारत के 4 नए स्थानों को रामसर स्थल घोषित किया गया है, और ये आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। अब इन चारों स्थानों को मिलाने के बाद भारत के कुल 46 प्लेसेस इसमें शामिल कर लिए गए हैं। रामसर स्थल का जो संबंध है वो वेटलैंड से है, जिसे हम आद्र भूमि कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। दोस्तों, जो 4 स्थान शामिल किए गए हैं, बस उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। पहली बात तो यह कि ये जो चारों हैं इनका संबंध बर्ड्स से है, पक्षियों से है, और यहाँ जो भी पक्षी हैं या जो पक्षी प्रवास के बतौर यहाँ आते हैं उनमें से कुछ की प्रजातियाँ खतरे में हैं, तो बर्ड्स से संबंधित हैं। और ये जो 4 जो रामसर स्थल हैं, आप देखिए कि इसमें से 2 स्थान गुजरात के हैं और 2 हरियाणा के हैं। जो गुजरात के स्थान हैं उसमें एक है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बर्ड सेंचुरी है थोल, ये गुजरात का स्थान है, नाम रखिए, याद रखिएगा। और जो दूसरा स्थान है वो है वधावन। हो सकता है कि उच्चारण में थोड़ा गड़बड़ हो, क्योंकि अंग्रेजी में WADH ये एन ए है, और फिर हिंदी में भी कुछ अखबारों में इसी तरह का वधावन शब्द सुनने को पढ़ने को मिला है। अगर कुछ गड़बड़ हो तो आप करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। और जो हरियाणा के 2 स्थान हैं उसमें एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये भी बर्ड्स से संबंधित है, और दूसरा है भिंडावास ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड, भिंडावास, यहाँ 250 प्रजाति के पक्षी आते हैं, रहते हैं, और कुछ इनमें से आप यूं कह लीजिए कि खतरे में हैं। तो फ्रेंड्स, ये 4 रामसर स्थल के नाम आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और अब टोटल जो संख्या है मैं रिपीट कर रहा हूँ, 46 हो गई है। जो दूसरी खबरें हैं वो आप ने कल का अगर प्राइम मिनिस्टर का भाषण सुना हो, जो आपको सुनना ही चाहिए, तो उसमें से कुछ चीज़ें निकल करके आई हैं। जैसे एक तो 14 अगस्त को अब भारत ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जब देश का विभाजन हुआ था तो उसकी जो विभीषिका थी कि लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, मारकाट मची हुई थी, दंगे मचे हुए थे। आप सोच करके देखिए कि 14 अगस्त को कैसा मौसम होता है। इस क्षेत्र का मानसून का मौसम है, लोग अपने अपने खेत बो चुके हैं लेकिन अब उन्हें शिफ्ट करना पड़ रहा है, क्या हालत रही होगी, बहुत ही विभीषिका वाला दृश्य था। दोस्तों, इसको लेकर के नॉवेल्स लिखे गए हैं, कहानियां लिखी गई हैं, फिल्में भी बनी हैं, सीरियल्स भी बने हैं। तो अब भारत ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। अखबारों में अफगानिस्तान की जो स्थिति होती जा रही है आप पढ़ रहे हैं। आप यूं कह लीजिए कि अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो चुका है, वहां के जो राष्ट्रपति थे वो अब अपना देश छोड़कर के ताजिकिस्तान भाग गए हैं, तो अब कुछ भी नहीं रहेगा। आप यूं कह लीजिए कि पूरी तरह से अब तालिबान पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हो गए हैं। इस बीच में आपने न्यूज़ में यह भी सुना होगा कि जो यूरोप के देश हैं और भी जो दूसरे बहुत से राष्ट्र हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये घोषणा कर दी है कि वो तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देंगे। लेकिन आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आप यूं कह लीजिए एक प्रकार से कि अफगानिस्तान में जो चयनित लोकतांत्रिक सरकार थी उसका पतन हो चुका है। फ्रेंड्स, आइए अब हम कल के पीएम के एड्रेस में जो महत्वपूर्ण जो 6 घोषणाएं हुए हैं उन्हें देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं 3 बातें आपको बताना चाहूंगा जो खासकर ब्यूरोक्रेसी से संबंधित हैं, सिविल सर्विस से संबंधित, सिविल सर्वेंट से संबंधित हैं, और ये अलग से टॉपिक है। देखिए, जब प्रधानमंत्री कोई भी बात कहते हैं और फिर अगर लाल किले से कहते हैं तो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। और सामान्यतः ये देखा गया है कि वहाँ जो घोषणाएं की जा रही हैं, अगर आप बहुत उन्हें ध्यान से सुनेंगे तो उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के बारे में मिल जाएंगे। जैसे ब्यूरोक्रेसी के बारे में उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट बातें कही हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए, और यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है मेंस में तो आपको उसे शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। पहला तो उन्होंने कहा कि अब हम पीपुल्स सेंट्रिक अप्रोच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो योजनाएँ होंगी, हमारे जो काम होंगे वो सब के सब पीपुल्स सेंट्रिक होंगे, यानी कि लोगों के हित को ध्यान में रख करके और लोगों से आप यूँ कह लीजिए सलाह मशविरा करके किया जाएगा। दूसरी उन्होंने याद दिलाई है, दूसरी बात, क्षमता विकास के लिए हमने मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की है। इस पर हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात की थी, तो हो सकता है कि मिशन कर्मयोगी पूछ लिया जाए क्योंकि प्रधानमंत्री रिपीट कर रहे हैं उसे, तो एक महत्वपूर्ण योजना है। और इसी तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का भी गठन किया गया है ब्यूरोक्रेसी की क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो आप यूं कह लीजिए कि उन्होंने एक प्रकार से रिमाइंड कराया है, पुनर्स्मृति दिलाई है। दोस्तों, अब मैं जो 6 महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं प्रधानमंत्री के द्वारा की गई वो आ रहा हूं, खासकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल के भाषण में प्रधानमंत्री जी ने आप यूं कह लीजिए कि अगले जो 25 साल हमारे होंगे, यानी कि जब हम अपने स्वतंत्रता के 100 वर्ष मना रहे होंगे, तब का एक आप यूं कह लीजिए कि एक दृश्य सा प्रस्तुत किया है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम क्या क्या करें, इसका आप यूं कह लीजिए कि एक रोड मैप सा प्रस्तुत किया है। तो उन्होंने जो 6 घोषणाएं की हैं जो मैंने छांटी हैं वो देखी है। पहला उन्होंने कहा गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, कहीं कहीं ये गति शक्ति परियोजना के नाम से भी आपको पढ़ने को मिलेगा। गति में शक्ति है, गति का मतलब हो गया स्पीड, और इसका संबंध सीधे सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर से है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर से जिसका संबंध हमारी गति से है, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट है, एयर कनेक्टिविटी है, बंदरगाह है, इन सबसे है, और इसके तहत समग्र बुनियादी ढांचा विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। याद रखिए, समग्र इंटीग्रेटेड, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी मीन्स होते हैं, जितने भी माध्यम होते हैं, उन सबको इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ डेवलप किया जाएगा, यानी एक दूसरे की वो मदद करें, और इस पर लगभग 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और स्वाभाविक है कि जब आप ऐसा करेंगे तो उससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, गति तेज होगी तो लॉजिस्टिक के जो खर्च हैं वो कम होंगे, हमारे चीज़ों की जो लागत होगी इससे घटेगी, बाजार तक हमारी पहुंच बढ़ेगी, तो डेफिनेटली इससे बहुत बड़ा लाभ आगे चलकर हो सकता है। और अमेरिका के विकास की गति जो तेज हुई है उसमें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है। जो दूसरी घोषणा उन्होंने की है दोस्तों, वो हरित हाइड्रोजन मिशन को लेकर के है, कि हम भारत को जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका हब बनाएंगे, उसका प्रोडक्शन करेंगे, इतना प्रोडक्शन करेंगे कि हम अपनी जरूरत पूरा करने के साथ साथ इसका निर्यात भी कर सकें। जो तीसरी घोषणा है वो वंदे भारत ट्रेन को लेकर के है कि 75 सप्ताह तक, आपको मालूम है कि ये अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, तो इसी दौरान 75 ट्रेन चलाई जाएंगी वंदे भारत के नाम से। जो ट्रेन होंगी वंदे भारत ट्रेन देश में चलाई जाएंगी और उसमें देश के जो अलग-अलग भाग हैं उनको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट जो योजना है मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है वो है फोर्टिफाइड राइस। देखिए भारत मुख्यतः चावल खाद्य पदार्थ के रूप में जाना जाता है, भारत का जो मुख्य खाद्य पदार्थ है वो चावल है, अब गेहूं भी हो गया है, आप कह लीजिए पैरेलल चलने लगा है। तो मिड डे मील वगैरह में जो चावल दिया जाता है तो उसमें कई बार आप अखबारों में पढ़ते हैं कि प्रोटीन विटामिन मिनरल्स जो होनी चाहिए उनकी कमी होती है, तो सरकार ने कहा है कि नहीं अब हम फोर्टिफाइड राइस पर आ रहे हैं और 2024 तक हम इसे अचीव कर लेंगे कि जो भी चावल इस तरह से दिया जाएगा वो फोर्टिफाइड राइस हो। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा फोर्टिफाइड राइस के बारे में, कुल मिलाकर के ये है कि चावल में कैसे विटामिन प्रोटीन आयरन ये जो पोषक तत्व होते हैं इन्हें बढ़ाया जा सके, तो इसे बाद में बकायदे किया जा सकता है, प्रोसेस्ड करके बकायदे उनकी जो क्षमता है, जो पोषण क्षमता है उसको बढ़ाया जा सकता है। इसी के लिए जो मुझे एक पढ़ने को मिला है वो है फेरिक साइरोफॉस्फेट, मतलब ये एक पाउडर जैसा होता है, प्रोसेस्ड करके उसको मिला देने से उसमें तत्व मिल जाते हैं, लेकिन और भी बहुत से तरीके हैं, ये तो मैंने आपको ये बस संकेत के रूप में बता दिया है। हो सकता है कि कुछ इसमें बोलने में कुछ वो भी हो गया हो, क्योंकि पहली बार मैं इस शब्द को बोल रहा हूँ, तो आप इसे देख लेंगे। जो पांचवी योजना है दोस्तों वो है कि हमारे यहाँ जो आर्मी स्कूल हैं उनके उनमें अब लड़कियों को भी दाखिला दिया जाएगा, उनके लिए सैनिक स्कूलों को खोल दिया गया है। और जो छठवा है वो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके वितरण के लिए, या कह लीजिए मार्केटिंग के लिए, ये शब्द ज़्यादा अच्छा होगा, कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा ताकि वो अपने सामान को पूरे देश में बेच सकें। और आप जानते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आर्थिक विकास के लिए, खासकर महिला सशक्तिकरण के लिए। और बकायदे प्राइम मिनिस्टर ने कोट भी किया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से हमारे देश की 8 करोड़ लगभग महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो ये आंकड़ा भी आपके लिए उपयोगी होगा। तो दोस्तों ये 6 महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं और मुझे लगता है कि जब भी आपको इन पर कुछ पढ़ने को मिलता है तो आपको उन्हें ध्यान से देखना चाहिए और जरूरी पॉइंट्स नोट भी कर लेने चाहिए। तो फ्रेंड्स मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं दीप शिखा चक्रवर्ती हटा मध्य प्रदेश से, कल्पना साहू जयसवाल आशु सगुना श्रीमाली सानंद गुजरात से, अनामिका विमल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, विजय शेरावत जयपुर राजस्थान से, अवंतिका मिश्रा महाराजगंज उत्तर प्रदेश से और प्रीतु ठाकुर, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।